राधिकाय तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्री कृष्ण बलराम इस्कान वृंदावन में प्रातः भागवत के सत्संग में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के सातवें अध्याय में देवराज इंद्र के द्वारा अपने गुरुदेव बृहस्पति, जिसको भगवान ने भगवत गीता में अपनी विभूति बताया है, उसका अपमान कर दिया और फिर इंद्र पश्चाताप कर रहा है। तो आज 15वें श्लोक में इंद्र का पश्चाताप पढ़ रहे हैं। ये कथा आगे चलेगी, इंद्र को विश्वरूप को ब्रह्मा जी के कहने के ऊपर गुरु करना पड़ेगा। विश्वरूप का ननिहाल के तरफ असुर है, इसलिए वो देवताओं के साथ साथ असुरों को भी आहुति डालेगा। लेकिन विश्वरूप के पास नारायण कवच की विद्या थी जो इंद्र को दी थी। फिर विश्वरूप को इंद्र मारेगा, उसको ब्रह्म हत्या लगेगी और उसके बाद वृतासुर और इंद्र का युद्ध होगा। तुष्टा जिसका बेटा विश्वरूप है, उसने यज्ञ के अंदर से वृतासुर को उत्पन्न किया। ये कथा आगे नारायण कवच आएगी, सब आएगी। लेकिन इसकी भूमिका में इंद्र के द्वारा अपने गुरु का अपराध हुआ है। तो आइए 15वें श्लोक का पाठ करेंगे। अथा अहमराचार्यम अगाध दिष्णम द्विजम प्रसादयस्ये निष्ठः शीर्षणात् चरणं स्पृशन्। अब इंद्र कह रहा है अथ अहम, इसलिए मैं, इसलिए का मतलब अगले श्लोक में कहा गया है कि राजा राजाई के मध में दूसरे राजा का या ब्राह्मण का अपमान करे तो उसको समझना चाहिए कि अज्ञानी है, तो मेरे से अपराध हो गया। तो इसलिए अथ अहम, इसलिए मैं अमर आचार्यम, अमर आचार्यम, अमर वैसे देवताओं को कहते हैं और इंद्र की पुरी का नाम है अमरापुरी, जहां इंद्र रहता है उसका नाम है अमरापुरी। और इंद्रों को इंद्र आदि देवताओं को अमर इसलिए कहते हैं, उन्होंने अमृत पिया हुआ है, जो भगवान ने अमृत उनको प्रकट करके दिया था, उन्होंने पिया तो वो अमर हो गए। तो अमर देवता है और अमर आचार्य मतलब देवताओं का आचार्य, तो देवताओं का आचार्य बृहस्पति है और दैत्यों का आचार्य शुक्राचार्य है। इन दोनों को भगवान ने भगवद गीता के 10वें अध्याय में अपनी विभूति बताई है। तो मैं अभी हमारे देवताओं के आचार्य, देवताओं के आचार्य उसके लिए क्या करूंगा, प्रसाद देशे उसको प्रसन्न करूंगा, उसको राजी करूंगा। कैसे? निष्ठ। निष्ठ का मतलब है मैं कोई राजनीति से नहीं करूंगा, कोई बिल्कुल सरलता से, कोई उसमें भेदभाव नहीं करूंगा, कुछ रख रखाव नहीं करूंगा, सीधा सा जाऊंगा और उसको प्रसन्न करूंगा। निष्ठा का श्री प्रभुपाद ने अर्थ लिखा है विदाउट ड्यूप्लिसिटी, मतलब क्या, कोई कूटनीति का प्रयोग नहीं करूंगा, सीधी सी बात करूंगा और उसको प्रसन्न करूंगा। तो कैसे प्रसन्न करोगे? शीर्षणा मेरे अपने सर को, तत्चरणम स्पर्शनम उसके चरणों में मेरा सर डाल दूंगा। इतने ऐसा क्या उसमें है, कौन सी विशेषता है आचार्य जी की कि आप तो राजा हैं इंद्र स्वर्ग के, आप उनको जाके सर उनके चरणों में डाल के उनको राजी करेंगे। तो कहते हैं अगाध धिष्णिम द्विजम, एक तो द्विज है ब्राह्मण है, और अगाध धिष्णिम का मतलब है आध्यात्मिक अगाध दिव्य ज्ञान का वो स्रोत है। अगाध मतलब बहुत गहरा, धिष्णिम का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, तो आध्यात्मिक ज्ञान परिपूर्ण है उनके पास, बहुत गहरा है और वो ब्राह्मण है, उसको मैं प्रसन्न करूंगा, उसके चरणों में अपना सिर जाके झुकाऊंगा। ऐसे इंद्र ने पश्चाताप किया। गलती हो जाए ये तो मानव के लिए संभव है, लेकिन गलती के बाद पछताव करे ये बुद्धिमानी है। पछताव करना चाहिए और पछताव करने के बाद जिसके प्रति गलती हुई है उससे क्षमा याचना करके उसको प्रसन्न करना चाहिए। तो अर्जुन इंद्र ने निर्णय किया कि अब मैं हमारे अमर आचार्य जो आध्यात्मिक ज्ञान में गहराई की सीमा है उसको प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण के चरणों में जाके मैं अपना सिर रख दूंगा। अपमान क्या हुआ, इंद्र बैठा था सभा में और सारे देवता बैठे थे, अंदर आया शुक्राचार्य ने उठ के उनका सम्मान नहीं किया, मुंह फेर दिया, जैसे उसको देखा ही नहीं। ऐसे शास्त्र में लिखा है ब्राह्मण के माता पिता, बड़े के बुजुर्ग के ज्ञान में बड़ा हो, उम्र में बड़ा हो, कोई सम्मान्य व्यक्ति के आने के ऊपर अगर कोई नहीं उठता है तो उसके प्राण निकलने के लिए छटपटाते हैं, उसका आदर नहीं करते हैं, तो उसका विद्या चली जाती है, बल चला जाता है, आयु कम होती है, यश कम होता है। चार चीजें हानि होती है, चार चीजों की, सम्मान्य व्यक्ति का उचित सम्मान न करने से, आयु, बल, यश और विद्या, ये कम होते हैं। कहते हैं उठने से प्राण बच जाते हैं, नहीं तो प्राण निकलना चाहते हैं कि आया है उसको प्रणाम नहीं किया, प्राण निकल जाने चाहिए, इसलिए उठ जाता है उसके सम्मान करने के लिए। तो सम्मान करना ये हमारी मर्यादा में है, और जो बड़ों का सम्मान करता है, गुरुजनों का आदर करता है, उसमें ये चार चीजों की वृद्धि होती है, बल यश आयु और विद्या की वृद्धि होती है। तो इंद्र ने ये पछतावा किया कि मेरे से अपने गुरुदेव का अपमान हो गया। वैसे पांचवें स्कंद भागवत में तो लिखा है घर में कोई अतिथि आए और आदमी मुंह फेर दे और आंख नहीं मिलाए तो उसको एक नरक में डाला जाता है जहां चील उसकी आंखें निकालती है, क्योंकि उसने आंख से उसको देख के स्वागत क्यों नहीं किया। तो मेहमान आए, अतिथि आए, तो उसका सम्मान करना चाहिए, आदर देना चाहिए, कम से कम मीठे शब्द तो बोलने चाहिए। अब गुरुवर आए और बड़े आदमियों के बीच में बैठा हुआ उसका सम्मान नहीं करे तो ये अपमान, बहुत भारी अपमान है। और गुरु ने जैसे सोचा, देखा कि इंद्र अब मेरे पास आ रहा है, गुरु वहां से अदृश्य हो गए, मिले ही नहीं। बृहस्पति जी वहां से चले गए, अदृश्य हो गए और मिले ही नहीं इंद्र को उस समय। फिर इंद्र को दूसरा पुरोहित करना पड़ा, बहुत बड़ी समस्या के अंदर से गुजरना पड़ा। और जैसे पता लगा दैत्यों को कि गुरु का अपमान किया, उन्होंने कहा अब इनका बल खत्म हो गया, चलो इनके ऊपर आक्रमण करें, और आक्रमण किया तो इंद्र जो है घबरा गया, हरा गया। तो एक गुरु के अपमान करने से सारे देवताओं का बल क्षीण हो गया। तो अब श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं, पहले अनुवाद पढ़ते हैं, आइए इसका अनुवाद पढ़ें। राजा इंद्र ने कहा, अतः मैं अत्यंत खुले मन से, खुले मन से का क्या शब्द है यहां, निष्ठम। खुले मन से मतलब कोई अंदर में दो भाव नहीं रखूंगा, खुले मन से तथा निष्पक्ष निष्कपट भाव से, निष्कपट भाव है निष्ठम का अर्थ। देवताओं के गुरु अमरा आचार्य बृहस्पति के चरण विंद चरणार विंद में अपना शीश झुकाऊंगा। सात्विक होने के कारण, वो सात्विक है, सात्विक होने के कारण वे समस्त ज्ञान के पूर्णतया अवगत हैं, समस्त ज्ञान से पूर्णतया अवगत हैं और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। ये प्रभुपाद जी ने सात्विक होने के कारण क्यों लिखा है, श्लोक में तो सात्विक नहीं है। ज्ञान सतोगुण में होता है, सतो संजायते ज्ञानम गीता में लिखा है, जो सतोगुण में होगा उसी में ज्ञान होगा। लेकिन इससे एक दूसरी बात समझनी चाहिए, ज्ञान भी तीनों गुणों के अंतर्गत है, उससे भगवान नहीं मिलता। ऐसे ग्यारहवें स्कंद में लिखा है भगवान पाना है तो ज्ञान का भी संन्यास करना पड़ेगा, ज्ञान को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान सतोगुण की वृत्ति है। तो यहां सतोगुण का है, क्योंकि देवता सतोगुण में होते हैं, मानव रजोगुण में प्रायः ज्यादा होते हैं और असुर आदि तमोगुण में होते हैं। ऐसे तो देवता वैसे भी सतोगुण में, तो उसका गुरु भी सतोगुण में इतना निष्ठ है कि उसके पास दिव्य ज्ञान का भंडार है। और फिर कहते हैं, अब मैं उनके चरणारविंद का स्पर्श करके उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से प्रणाम करूंगा, प्रसिद्ध्यते उसको प्रसन्न करूंगा। तात्पर्य, चेत होने पर राजा इंद्र की समझ में आया कि वो अपने गुरु बृहस्पति का निष्ठावान शिष्य नहीं है। चेत आने के मतलब थोड़ी देर के लिए वो अचेत हो गया था, अचेत हो गया मतलब चेतना उसकी गुरु के सम्मान के प्रति थोड़ी सी डगमगा गई थी। इतने सारे लोग मेरे सम्मान कर रहे हैं, गुरु आया ठीक है बैठ जाएगा, अपना आसन पड़ा है, गुरु का आसन तो पड़ा ही होता है। तो ये जो थोड़ी देर के लिए अचेत, ये सम्मान लेते लेते इंद्र की ऐसी आदत पड़ गई कि ब्रजवासियों के ऊपर भी जब उनको इंद्र यज्ञ नहीं किया तो डुबाने के लिए आ गया। क्योंकि सम्मान की आदत लेने जिसको पड़ जाती है ना, वो फिर सम्मान के बगैर छटपटाने लगता है और दूसरा का सम्मान करना ही भूल जाता है। इसलिए अपने गुरु के लिए कहता है ज्ञान है, लेकिन अपने के लिए कहता है कि ज्ञान का पहला लक्षण क्या है, भगवत गीता में ज्ञान का पहला लक्षण क्या है, अमानीतम। दूसरे से कभी भी मान देगा ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए कि दूसरा मुझे सम्मान देगा, ये आशा ही नहीं रखनी चाहिए। कोई देगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा, मुझे उसके लिए कोई छटपटाऊंगा नहीं, नहीं दिया तो मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा, क्या हुआ। अरे कोई प्रणाम करता है, आपके चरण छूता है तो अपने कर्म आपके ऊपर डालता है, आपकी भला ही नहीं करता है, आपको झमेले में डालता है, नहीं करे तो अच्छा है। प्रभुपाद किसी को मतलब किसी ने पूछा प्रभुपाद जी चरणों में छूते हैं आपको, बोला कोई चरण छुएगा तो अपने कर्म आपको देगा, पाप आपको देगा, तो क्या करना चाहिए? बोला उसके सर के ऊपर हाथ रखना चाहिए। बोला क्या होगा? बोला जो उसने दिया वापस उसी को दे दो। लोग कहते हैं सर के ऊपर हाथ रखो, कोई नहीं कहे तो जबरदस्ती दोनों रखना चाहिए कि जो आया वो वापस जाए, कहां हम उसको लेके घूमेंगे पराया। तो सम्मान असल में दूसरे का भार उठाना है, कोई ऐसा नहीं है कि सम्मान से आपको कोई प्रतिष्ठा और सम्मान, ये भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है, तो इसके लेने की इच्छा होनी नहीं चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने हरि नाम जपने वालों के लिए अमानी न मान देना, अपने मान के लिए झटपटाओ मत लेकिन दूसरे सबको सम्मान दो। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है वैष्णव की, सम्मान की कोई इच्छा नहीं, कोई पूछे कोई जाने कोई नहीं जाने, हमें क्या है, भगवान एक को हमको जानना है, सारे संसार को संतुष्ट करना हमारे बस की बात नहीं है। तो इंद्र को सम्मान की आदत पड़ी हुई थी और सम्मानित बैठे हुए उन्होंने जब चेत हुआ, इसका मतलब जब उसको ये समझ में आ गया कि मैंने ठीक नहीं किया है, अतः उसने निश्चय किया कि अब वो निष्ठ अर्थात निष्कपट हो बनेगा। इसका मतलब पहले उसने कपट किया, भाई निष्कपट आदमी कब बनेगा, भाई विकार, भाई संस्कार की जरूरत कब पड़ती है, जब विकार होते हैं, जब विकार होगा तब संस्कार करना पड़ेगा, विकार नहीं होगा तो संस्कार की जरूरत नहीं है। सुखदेव महाराज का जन्म हुआ कोई संस्कार नहीं हुआ, क्योंकि विकार था ही नहीं, वो भगवान के भक्ति में भगवान के ध्यान में निष्ठ था, उसके संस्कार की जरूरत नहीं पड़ी। और हम संसार में आते हैं तो विकार होते हैं, तो संस्कार से उसको सुधारना होता है, विकार का मतलब बिगड़ना और संस्कार का मतलब सुधारना। तो इंद्र ने कपट किया था, ये कपट हो गया, क्या कपट हुआ कि गुरु आया देखा लेकिन आंख घुमा दी, जैसे मैंने देखा ही नहीं है। ऐसे आप भी देखो अपने जीवन में, कई बार ऐसे कोई आता है तो हम समझते देखा ही नहीं है, हम ऐसे 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 हम ढोंग करते हैं जैसे हमने इसको देखा ही नहीं, और पास में गुजर जाते हैं उसको जैसे पता ही नहीं है। तो ऐसे सबसे सब लोग ऐसे किसी वक्त दिमाग में कोई बात ऐसी होती है तो ऐसा हो जाता है, कपट पूर्वक किया। अगर कपट पूर्वक नहीं करता तो क्या निष्कपट होने की क्या जरूरत है, भाई देखा नहीं होता तो कोई बात नहीं, देखा और फिर आंख फेर दी, ऐसे लिखा है ना आगे, देखा गुरु को और ऐसे अनदेखा कर दिया, मैंने देखा ही नहीं, देखा अनदेखा कर दिया, तो ये कपट हो गया। इसको कहते हैं एक अनजान में गलती हो जाए तो उसको गलती नहीं मानी जाती है, जानबूझ के गलती करे वो डबल गलती, जानता था भी नहीं करना चाहिए और फिर भी किया तो ये कपट हो गया। तो अब मैं निष्कपट बन जाऊंगा, निष्पक्ष कपट बनेगा। अब इंद्र ने कहा मैं निष्कपट बनूंगा, निष्ठ शीर्षा चरण स्पर्शन, प्रभुपाद ने दोबारा श्लोक को उद्धृत किया है, उसने अपने गुरु के चरणों को सिर से स्पर्श करने का निश्चय किया। सिर गुरु के चरणों में, इसका मतलब गुरु को प्रणाम करने किया जाता है ना, उसमें ये सर का अगर भाग उनके चरणों पे लगना चाहिए, ये गुरु के प्रणाम की विधि है। भगवान विष्णु नारायण कृष्ण राम के प्रणाम की विधि है कि वाम भाग उनकी तरफ होना चाहिए, दिल जो हमारा है उनकी तरफ होना चाहिए और साइड से प्रणाम करना चाहिए जैसे हम लोग करते हैं, ये विष्णु के प्रणाम की विधि है। विष्णु को प्रणाम सामने से किया जाए, सर उनके चरणों में हो, सीधे हाथ से किया जाए या पीछे से किया जाए तो पुण्य का नाश होता है, पुण्य का क्षीण होता है। और देवी देवता को प्रणाम सीधे तरफ से किया जाएगा, उल्टे से नहीं सीधे से। क्यों क्यों करते हैं उल्टे से, क्योंकि हम शक्ति हैं भगवान की, भगवान शक्तिमान है और शक्ति को वाम भाग में होना चाहिए, जैसे भगवान की शक्ति राधा वाम भाग में रहती है, लक्ष्मी वाम भाग में रहती है, तो हम भगवान की शक्ति हैं। आप चैतन्य पंच तत्व को देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु के सीधे तरफ नित्यानंद है क्योंकि विष्णु तत्व है, उनके सीधे तरफ अद्वैत आचार्य विष्णु तत्व है, और उनके वाम भाग में गदाधर है वो शक्ति तत्व है, और उसके वाम भाग में श्रीवास है वो शक्ति तत्व, वो वाम भाग में आएंगे और वो विष्णु तत्व सीधे तरफ आ जाएंगे। और गुरुजनों को प्रणाम करने की विधि है, ये चरण उनके, ये सर उनके चरणों को स्पर्श करना चाहिए। इसकी परिभाषा क्या है कि ये दिमाग इस सर में जो है, इससे मैं अब कुछ नहीं करूंगा, जैसे आप आज्ञा करोगे वैसे मैं करूंगा। चरण के ऊपर सर रखने का मतलब, मैं अपने बुद्धि को आपके चरणों में अर्पण करता हूं, मेरे मन को आपके चरणों में अर्पण करता हूं, आप मुझे चलाइए जैसे चलाना चाहते हैं, ये भाव है। एक प्रणाम करने का सामान्य विधि हाथ जोड़ना, जैसे सामान्य लोग हाथ जोड़, इसका मतलब होता है मैं क्या सेवा करूं आपकी, इसका ये अर्थ है मैं कैसे आपकी सेवा करूं। हाथ जोड़ने के बाद सर झुकाया जाता है, कभी सर झुकाने का मतलब है आज्ञा कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। लेकिन जब दंडवत प्रणाम करना है तो ये डंडे की तरह हो गया, इसको हाथ में रखो, इसको कंधे पे रखो, इसको ऐसे रखो, आपकी मर्जी जैसे रखो। दंडवत का मतलब न मैं मन को चलाऊंगा न शरीर को चलाऊंगा, आप कहेंगे तो उठूंगा, कहेंगे तो बैठूंगा, कहेंगे तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, ये दंडवत की परिभाषा है। तो ये प्रणाम के तीन स्तर है। यहां ये कहते हैं मैं सर गुरुदेव के चरणों में रख दूंगा, इसका मतलब क्या है कि मैं जो मेरे से कपट हो गया उसकी क्षमा याचना करने के लिए पांव पकड़ते हैं। गुरुजनों की सबसे कमजोर चरण होते हैं बड़ों का, उनको पकड़ लोगे तो क्षमा मिल जाएगी, ये सिद्धांत है। चरणों को पकड़ लेना, मैं आपके चरणों में गिर पड़ता हूं तो मैं चरणों में गिर पड़ूंगा, इसका मतलब है। तो विशेष रूप से ब्राह्मण है, गुरु है, माता पिता है, चरणों में पड़ने से क्षमा कर देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ये सबने समझा हुआ है, इसलिए इंद्र ऐसे कह रहा है। इस उदाहरण से हमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा व्यक्त नियमों की सीखना चाहिए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे करने की जरूरत क्या है, तब कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो भजन हम रोज गाते हैं सुबह मंगल आरती में, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादौ यस्य प्रसादा न गति कुटोपि। गुरुदेव की प्रसन्नता के बगैर भगवान को पाना, प्रसन्न करना संभव नहीं है। गुरुदेव की कृपा से भगवान प्रसन्न होते हैं, और गुरुदेव कृपा न करें तो भगवान को प्रसन्न करना संभव नहीं। प्रसादे का मतलब कृपा, गुरु की कृपा से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। वैसे कहते हैं भगवान की कृपा तो सदा बरसती रहती है, भगवान कृपा कभी बंद नहीं करते हैं। भगवान कृपा किसके माध्यम से करते हैं, भक्त लोग, हम लोग किसको रोज प्रार्थना करते हैं, हरे हरे किसको कहते हैं, और राधा रानी रहती कहाँ है। बरसाने का मतलब क्या है, वर्षा होती रहे कृपा की सदा, कभी कृपा कोई उनकी गई, कृपा की वर्षा में कमी नहीं आती। तो उसकी वर्षा तो हो रही है, लेकिन गुरु कैसे कृपा करेंगे ये समझना चाहिए। वो भगवान की कृपा में कभी कमी नहीं है, उसकी कृपा सदा बरसती रहती। तो हमारी समस्या क्या है, वर्षा कितनी भी आए लेकिन आपका कटोरा, आपका लोटा, आपका बर्तन उल्टा पड़ा है तो उस भरेगा क्या, कृपा से नहीं भरेगा ना। तो गुरु की कृपा क्या है, हमारे बर्तन को सीधा कर देते हैं, वो ठोकर मार के कटोरे को सीधा कर देते हैं, तो फिर कृपा ऊपर से आ जाएगी। हमारा दिमाग, हमारा कटोरा उल्टा है। एक साधु के पास कोई गया कि महाराज कुछ शिक्षा दीजिए, बोला अपना लोटा साथ रखा करो। बोला वैसे साधु है, लोटा तो साथ होता ही है, इसका मतलब क्या। वो लोटा का मतलब ये दिमाग अपने साथ रखा करो, कहीं कोई कहे तो उसको समझ लिया करो, ये बुद्धि नहीं हो। जैसे इंद्र का दिमाग उधर नहीं था, दिमाग वहां होता, चेत होता तो गुरु का अपमान नहीं होता। तो अपना हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो क्या बात कर रहे थे, हरे कृष्ण, क्या बात कर रहे थे, गुरु की कृपा कैसे होती है, और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में क्या लिखा है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु कृपा क्या करेगा, बर्तन को सीधा करेगा, और कृष्ण का प्रसाद क्या है, उसकी तो कृपा बरसती है लेकिन हमारा बर्तन उल्टा पड़ा है। उल्टा पढ़ा है का मतलब है हम शरीर के लिए ही सब काम करते हैं, आत्म चिंतन की तरफ हमारी रुचि नहीं है, ये बर्तन उल्टे का मतलब है। हमारी सोच हमारा विचार केवल शरीर के ऊपर केंद्रित है कि हम कैसे दिखते हैं, हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारे को भोजन कहाँ मिलेगा, इसी के अलावा आत्मा के लिए चिंतन नहीं करते, ये बर्तन उल्टे की परिभाषा है। तो गुरुजन क्या करते हैं एकदम, और दूसरा क्या उल्टे बर्तन की परिभाषा क्या है? अपने आप को स्वामी समझने की मूर्खता। अपने आप को स्वामी समझने की मूर्खता, ये बर्तन उल्टा है। और हमको क्या गुरुदेव पहले पहले दिन जब वो उनका शरण लेते हैं तो क्या देता है? वो एक उपाधि दे देता है। कौन सी उपाधि देता है? तुम दास हो, तुम खास नहीं हो। ये एक बड़ी उपाधि, ये बर्तन सीधा करना है। और अभी भी मैं बार बार ये कहता हूं, अभी भी हम इतने कपटी हैं, बदमाश हैं। गुरुदेव ने नाम दास दिया है लेकिन हम किसी को बताते हैं तो दास नहीं कहते, प्रभु कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? ये हमारी कई जन्मों की आदत है, ये बर्तन उल्टा है। इसलिए वैष्णव क्या लिखते हैं? दास दास अनुदास, दास दास अनुदास लिखते हैं, दासों के दासों का दास। तो ये बर्तन उल्टा है। गुरुदेव की कृपा क्या होती है? बर्तन सीधा करते हैं, हमारे को नित्य कृष्ण के दास हैं ये बताते हैं, और हमको कहते हैं शरीर नहीं है तुम आत्मा हो, शरीर का निर्वाह करो लेकिन आत्मा का उद्धार करो। शरीर का निर्वाह करना है, आत्मा का उद्धार करना है। उद्धार किससे करना है? भौतिक तीनों गुणों के रस्सी से बंधा हुआ है आत्मा, जेल में, इसको उद्धार करना है। तो ये गुरु की कृपा के बगैर नहीं होगा। भगवान की कृपा सदा बरसती है, ये समझो, उसकी कृपा में कभी कमी नहीं आती है, लेकिन हम उसकी कृपा लेने के योग्य तब बनते हैं जब गुरु की कृपा होती है। और गुरु की कृपा नहीं होगी तो हम वो कृपा ले ही नहीं सकेंगे। हमारे पास भले पड़ा रहे फिर भी हम नहीं ले पाएंगे। तो ये प्रभुपाद जी ने लिखा है, गुरु की कृपा से श्री कृष्ण की कृपा का आशीर्वाद मिलता है, बिना गुरु के प्रसाद के मनुष्य किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता। शिष्य को कभी भी अपने गुरु के प्रति दंभी, दंभी का मतलब क्या? दंभी का मतलब जो नहीं है वो दिखाने का प्रयास करना। दंभ उसको कहते हैं जो वो नहीं है वो दिखाने का प्रयास करे। आपको दंभी की सरल परिभाषा बताऊं, जब गुरु आते हैं तो शिष्य उसके आगे ऐसे नाचते हैं, ऐसे घूमते हैं जैसे इनसे ज्यादा कोई शुद्ध भक्त है ही नहीं, और गुरु जब जाते हैं तो उनको ढूंढना ही मुश्किल पड़ता है कहां सोए हुए। ये दंभ की बहुत सिंपल परिभाषा है, बहुत सिंपल परिभाषा ये। और अधम्भीत हम कौन है? दंभ से रहित कौन शिष्य? गुरु जब आए तब सेवा में पीछे लगे, गुरु को पता नहीं लगे कि सेवा सारी कौन कर रहा है, वो सामने जाने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं तुम भगवान को देखने का प्रयास मत करो, तुम ऐसा काम करो कि भगवान तुमको देखे। जो गुरु के आगे पीछे दंभ से घूमने की जरूरत नहीं है, ऐसा काम करो कि गुरु पूछे कि ये किसने बनाई, प्रसाद किसने बनाया, माला किसने बनाई, तो आपका स्मृति अपने आप आ जाएगी। और आप आगे पीछे जैसे ही घूमते रहेंगे तो गुरु जी कहेंगे जाओ बाहर थोड़ी देर के बाद आना। और वैसे भी जब बुलाए तब जाना, बिना बुलाए जाना भी दूर से प्रणाम करना बस इतना ही काफी, क्योंकि आगे आएगा। कभी कभी हम इसी दंभ के कारण अपमान करते हैं, ये गुरु जी को इस बात का पता नहीं है, हम ऐसे भी कभी सोचते हैं इस बात का गुरु जी को पता नहीं। तो ये दंभ क्या लिखा है यहां? हाँ, शिष्य को कभी भी अपने गुरु के प्रति दंभी और कृतघ्न नहीं होना चाहिए। कृतघ्न किसको कहते हैं? उसने जो कृपा की है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। कृतघ्न बहुत भारी शब्द है, भगवान अहंकारियों को माफ कर देता है, लोभी को माफ कर देता है, कामी को माफ कर देता है, लेकिन कृतघ्न के लिए कोई भी छुटकारे का साधन नहीं है। ये भगवान रामचंद्र ने कहा था लक्ष्मण को कि सुग्रीव को कहो कि कृतघ्न के लिए कोई साधन नहीं है, जो बाण बाली को लगा था वो बाण अभी भी उस रास्ते पे भेजने के लिए हमारे पास है। और गोपियों ने कृष्ण से पूछा था रास के अंदर से, जब कृष्ण अदृश्य हो गए, अदृश्य क्या हो गए, वहीं थे, कोई चुनरी गोपी की ओढ़ के उनके बीच में थे, उनको दिखाई नहीं दिए, उनके साथ ही घूम रहे थे असल में, क्योंकि प्रकट कहां हुए, उनके बीच में ही प्रकट हुए। जब मिल गए तो गोपियों ने पकड़ के उनसे पूछा कि एक लोग होते हैं तुम प्यार करो तो वे प्यार करते हैं, और दूसरे होते हैं तुम प्यार नहीं करो तो भी वो प्यार करते, और तीसरे होते हैं तुम कितना भी प्यार करो वो बिल्कुल तुम्हारी तरफ देखते ही नहीं। कृष्ण बताओ ये कौन कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण का, देखिए तुम किसी का काम करो, तुम्हारा कोई काम करे, ये मित्र होते हैं दुनिया में। बोले तुम काम नहीं करो फिर भी सामने वाला कृपा करे, ये माता पिता होते हैं, बच्चे कैसे भी बदमाश हो लेकिन माता पिता उनका ध्यान करते हैं। लेकिन तुम प्यार करो सामने वाला कुछ नहीं करे, तो ये या तो कोई साधु है जो समाधि में, उसको पता ही नहीं है कि दुनिया में कौन मुझको जा रहा है, कौन दे रहा है, कौन खिला रहा है, या पागल है उसको पता ही नहीं है, या कृतघ्न है। तीन ही उसकी परिभाषा बताई। तब गोपियां हंसती हुई आपस में कहती है कि ये पागल तो है नहीं, कृष्ण पागल तो है नहीं और समाधि में भी नहीं है, तो ये बड़ा कृतघ्न है, हम इससे प्रेम करती हैं और ये निष्ठुर होके हमको ठुकरा देता है। तब कृष्ण ने अपना दुपट्टा हाथ में लिया और हाथ जोड़ के कहा गोपियों ब्रह्मा जी की आयु तक भी मैं आपकी सेवा करूं तो मैं आपका ऋणी नहीं हो सकता हूं, मैं आपसे आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूं, न पारे हम गोपियां। तो ये भगवान ने कहा मुझे कृतघ्न मत कहो, आपने जो मेरे लिए किया है मैं कभी नहीं कर सकता, तो गुरु जी हमारे लिए करते हैं उतना हम कभी नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने कहा कि आप क्या मुझे दे सकती हो, मैंने जो दिया है उसके बदले में आपको देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। कोई आदमी गुरु के ऋण से उऋण हो ही नहीं सकता, उऋण हो ही नहीं सकते हैं हम गुरु के ऋण से, इसलिए गुरु कृपा करे तो उसकी मर्जी, लेकिन हम उऋण नहीं हो सकते। तो कभी भी कृतघ्न नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा भारी शब्द दो प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, एक दंभी नहीं होना चाहिए, एक कृतघ्न नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय के 27वें श्लोक में गुरु को आचार्य कहा गया है। आचार्य का मतलब अपने आचरण से सिखाए। आचरण से सिखाने में हमारे पास सरल क्या उपाय है, अगर वो हरे कृष्ण जपता है तो हमको भी कहता है हरे कृष्ण जपो, ये आचरण से सिखा रहे हैं। ऐसे बहुत से गुरु हैं खुद कुछ नहीं जपने, शिष्यों को बोलते हैं ये जाके जपो, महाराज आप बोलो हमारे को क्या जरूरत है, हमारे को क्या जरूरत है बोलते हैं। प्रभुपाद जी की दिल्ली में गुरु पूजा हो रही थी, सब लोग गा रहे थे श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदम, और प्रभुपाद जी भी गा रहे थे। तो एक बहुत बड़ा विद्वान दक्षिण भारत का था, तांत्रिक भी जानता था, वो बाहर से पूछ रहा था, लोकनाथ स्वामी खड़े थे उनसे, कि आप तो गुरु की पूजा कर रहे हो लेकिन गुरु जी भी क्यों गा रहे हैं? बोला ये अपने गुरु जी की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभुपाद को कहते थे प्रभुपाद, प्रभुपाद कहता है प्रभुपाद, अरे प्रभुपाद आप प्रभुपाद बोले, नहीं आपका मैं प्रभुपाद है, मेरा प्रभुपाद और है, मेरा गुरु मेरा प्रभुपाद है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास आके सब कुछ समाप्त हो गया, नहीं आपका प्रभुपाद है मेरा भी प्रभुपाद है, प्रभुपाद जी कहते थे। तो उस ब्राह्मण ने निर्णय किया कि ये सही गुरु है, इसकी पूजा हो रही है, तो ये भी वही गा के अपने गुरु को अर्पण कर रहा है, वो फिर शिष्य बन गया प्रभुपाद जी का, बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण शिष्य बना था वो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आचार्य कहते हैं गुरु को, आचार्य का मतलब है वो अपने आचरण से सिखाते हैं, अपने आचरण से सिखाते हैं। तो आचार्य कहते हैं, और फिर श्लोक लिखा आचार्य माम विजानीयम, आचार्य माम विजानीयम, आचार्य को मैं मेरे समान समझो, मेरा प्रतिनिधि है। ये भी हम गाते हैं गुरु के मंत्र में, क्या गाते हैं, साक्षात हरि त्वेन समस्त शास्त्र। सब शास्त्र कहते हैं गुरु हरि के, साक्षात हरि त्वेन, साक्षात फिर क्या शब्द है, किंतु, किंतु आ जाए तो क्या होता है, नहीं, फिर क्या लिखा है नीचे, क्यों भगवान के समान मानते हैं, किंतु प्रभुर ये तत्स्य, क्या किंतु, गुरु भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान का प्रतिनिधि है, इसलिए उनके समान उसको। किस बात में भगवान के समान है गुरु, सृष्टि करता है गुरु, रासलीला करता है, केवल कृपा की मूर्ति, भगवान से भी गुरु ज्यादा कृपा करने में भगवान की मूर्ति है। इसलिए प्रभुपाद जी के आगे हम क्या लिखते हैं, श्री कृष्ण कृपा मूर्ति। वैसे भगवान सीधी किसी के ऊपर कृपा नहीं करते, जैसे समुन्द्र का पानी है ना, न पीने के काम का है न खेती के काम का है, ऐसे वेद शास्त्र भगवान है तो अथा है तो अनंत, लेकिन सीधा उपयोग में नहीं आता। गुरु क्या है, बादल, सूर्य की तपस्या वही समुन्द्र का पानी है जो बादल में मीठा हो जाता है, तो वही भगवान की कृपा वो अपने तपस्या से, अपने हृदय की शुद्धि से, अपनी सेवा से, अपने प्रेम से, उसी भगवान की कृपा को बादल के रूप में मीठा पानी बना के बरसाते हैं, तब खेती भी होती है और प्यास भी बुझती है। तो ये दोनों में अंतर है। गुरु मेघ के समान है, बादल के समान है, और भगवान समुद्र के समान है। पानी तो समुद्र का है, अपना नहीं है, लेकिन बरसाने में, कृपा बरसाने में गुरु बहुत बड़ा उधार है। भगवान तो फिर भी नेम बना रखा है, लेकिन गुरु गली गली में जाके भगवान के गुण गाता है, भगवान के सेवा में लगाने के लिए। प्रभुपाद जी इस उम्र में पूरी दुनिया के अंदर भ्रमण करके लोगों को कृष्ण भावना और वृंदावन का चेतना दी, ये बहुत बड़ा गुरु का काम है, नहीं तो अपने आप संभव नहीं है। तो ये जो गुरु के लिए शब्द है, आचार्य में, हाँ क्या लिखा है, गुरु किस बात में भगवान के समान है, कृपा करने में, इसलिए कहा उसकी कृपा से ही भगवान की कृपा मिलती है, और ये मुख्य बात है, उसकी कृपा, गुरु कृष्ण प्रसाद है, तो कृपा की मूर्ति है भगवान की, और भगवान से ज्यादा उधार है कृपा करने में। अब आगे लिखा है, श्री भगवान का कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि गुरु को ही साक्षात भगवान मानकर उसका आदर करे। नाव मन्येत करचित, आगे का श्लोक आता है, नाव मन्येत करचित, नाव मन्येत करचित, कभी भी आचार्य का अनादर न करे। ये ऐसा प्रश्न है, जैसे ऐसा श्लोक है जिसका, जैसे एक श्लोक है, भक्तों को सदा भगवान कृष्ण को याद करना चाहिए, और फिर क्या लिखा है, कभी नहीं भूलना चाहिए, ये दूसरा लिखना बहुत जरूरी था, ऐसे गुरु का आदर करना चाहिए के बाद कभी निरादर नहीं करना चाहिए। ये दोनों बातें लिखने से उस, वो जो जो सूत्र है वो पूरा हो जाता है। न मर्त्या बुद्ध्या सुयेत, अब आगे गुरु के लिए तीसरी बात है, पहली क्या है, मेरे समान मानना, दूसरा उसका आदर करना, कभी निरादर नहीं करना, और तीसरा उसको सामान्य, आचार्य को कभी सामान्य जन नहीं समझना चाहिए। न मर्त्य, मर्त्य मतलब मरण, जीवन मरण वाले, न मर्त्य बुद्ध्या, मृत्यु बुद्धि उसमें नहीं होनी चाहिए, उसको सामान्य नहीं समझना चाहिए, सुयेत, ये ईर्ष्या हो जाएगी हमारे जैसा है। तो बुद्धि कभी सामान्य नहीं होनी चाहिए। अधिक परिचय से अनादर होता है, बार बार आगे पीछे घूमने से कभी जाने अनजाने में अनादर हो जाता है। ये बहुत सावधानी है, जब तक बुलाए नहीं सेवा में तब तक दूर रहना चाहिए, नहीं तो जाने अनजाने में अनादर हो जाता है। अगाध दृष्टिनाम द्वेजम, अब आचार्य के श्लोक का जो शब्द है, पूर्ण ब्राह्मण होता है, हाँ कहाँ है क्या 16-17 आचार्य पूर्ण ब्राह्मण होता है और वो अपने शिष्य को शिष्य के कर्मों के निर्देशन की अपार बुद्धि रखता है। ये जो श्लोक में शब्द है उसका प्रभुपाद जी कहते हैं आचार्य पूर्ण ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। आचार्य के लिए दूसरे क्या शब्द है वेद में? ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्री। ब्रह्म का मतलब वेद, जिसने वेद सुना है, और ब्रह्मनिष्ठ इसका मतलब जो भगवान के ऊपर जिसकी निष्ठा वाली भक्ति है। ये गुरु की परिभाषा दो है, ब्रह्म श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठी। ये ब्रह्म, ये आचार्य को कहते हैं। तो यहां लिखा है वो पूर्ण ब्राह्मण है, इसका मतलब है वेद पढ़ा है और भगवान के ऊपर पूरा उसका विश्वास है। वो अपने शिष्यों के कर्मों के निर्देशन की अपार बुद्धि रखता है, क्या काम करना चाहिए शिष्य जिससे उसका उद्धार होगा। ये बहुत बड़ी रहस्य की बात है, गुरु शिष्य के वर्ण का निर्देश अनुभव करके उसको उसी काम में लगाता है और उसी काम से वो भगवान को प्राप्त करता है। क्योंकि दो काम है गुरु के, एक तो आत्मा के उद्धार के लिए सबके हरे कृष्ण मंत्र देता है, लेकिन सेवा उसके शरीर की प्रवृत्ति क्या है, उसका किस कौन सी सेवा में उसको लगाना चाहिए, ये गुरु की विशेषता है। प्रभुपाद जी संन्यास देने के बाद भी गर्ग मुनि को कहते थे जाओ पैसा इकट्ठा करो, जाओ धंधा करो, बिजनेस करो, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति वैश्य की थी, तो उसमें पैसा इकट्ठा करना मुश्किल नहीं है, उसको इकट्ठा करना आता था। और किसी को कहते कि आप पुस्तक छापो, पुस्तक वितरण करो, ब्राह्मण बुद्धि है, उसका पुस्तक का काम कर सकता है। तो हर एक गुरु अपने शिष्य को कौन से कार्य में लगाना चाहिए, जो सेवा वो सुलभता से कर सके और श्रेष्ठ रूप से कर सके और भगवान को प्रसन्न कर सके, इसकी बुद्धि होती है, रखता है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं तद्विधि प्रणिपाते न परिपर्शने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्व दर्शन। गुरु के निकट जाकर पहला क्या है? तद्विधि। तद्विधि का मतलब ज्ञान प्राप्त करने, क्योंकि इससे पहले श्लोकों में क्या है, ये दिव्य ज्ञान मिल जाए तो अग्नि जैसा है, कई कुंटल लकड़ी को भस्म कर देता है। इस ज्ञान की नाव में चढ़ोगे तो पार हो जाओगे। तो उसके बाद कहते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करना है, तो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना है तो तद विधि, उसकी विधि ये है प्रणिपाते न, प्रणाम करके गुरु के पास बैठ जाओ। ये बहुत बड़ा, कितने लोग हैं जो प्रणाम करते हैं लेकिन बैठते नहीं है, चलते हैं। प्रणाम करके बैठ जाओ, बोला बैठ के क्या करें? परिपर्शने न, परिपर्शने न सर्व होता ना, तो लोग इसका गलत लाभ ले लेते। परिपर्शन, परि का मतलब है भगवत प्राप्ति के प्रश्न करो, अध्यात्म प्रश्न करो, कौन से नंबर पे सट्टा लगाऊं ये नहीं पूछना गुरु से, इस समय कौन सा माल लूं, लोहा लूं के अनाज लूं के सोना लूं, ये गुरु से पूछने के सब प्रश्न नहीं है। बेटा चाहिए गुरुजी हमारे को, धंधा ठीक नहीं है, अब यही काम गुरु को करना है तो फिर तो वो भी कारखाना चला था आपके साथ, तो गुरु क्यों बनता। हंसने की बात है, एक महात्मा के बाहर चेले बैठे थे, बोला आपका जो समस्या है उसका समाधान गुरुदेव कर देख रहे हैं। तो एक पति पत्नी आए, बोला गुरु जी लड़का होमवर्क नहीं करता है, बहुत परेशान है। गुरु जी ने कान पकड़ के कहा कि यही तो समस्या है, इसलिए तो मैं साधु बनाऊं। बाकी सब समस्याओं का समाधान है, लेकिन इसका नहीं हो सकता। ये आजकल के बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, कुछ करने वाले नहीं है, मोबाइल के ऊपर। इसको इसका नाम है टूटा गर्दन वाला, ये जनरेशन पूरी ऐसे सारा दिन मोबाइल पे। अपना गर्दन टूटा है, माता पिता का गर्दन भी तोड़ देते हैं। सब रोज है, नई चीज चाहिए, ऊपर सर ही नहीं उनका होता है, सर ही ऊपर नहीं है। नेक ब्रेक जनरेशन। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। असल में प्रश्न कौन से पूछने चाहिए? पर की प्राप्ति के, पर ब्रह्म की प्राप्ति के, वो प्रश्न पूछना चाहिए। बोला फिर क्या? सेवया। हाँ फिर है सेवया। यहां सेवया की परिभाषा ये है कि जो वो उत्तर दे उसका सेवन करो। आपने प्रश्न पूछा, उन्होंने उत्तर दिया, अब उनका सेवन करो। जैसे दवाई का सेवन करने का मतलब क्या है? खाओ। सेवन करने का मतलब दवाई का ये नहीं है कि उसकी आरती करो बैठ के। तो सेवन का मतलब है गुरु के आज्ञा का पालन करना। गुरु कहता है हरे कृष्णा जपो, तो हरे कृष्णा जपना है। गुरु कहता है झाड़ू निकालो, तो झाड़ू निकलना है। तो गुरु के शरीर की सेवा गुरु की करना, वो तो ठीक है, करनी चाहिए मर्यादा में, लेकिन उससे ज्यादा उनके वचन की सेवा, गुरु वाक्य की सेवा, वो मुख्य सेवा है। गुरु वाक्य, गुरु पद, क्या गुरु मुख वाक्य चित्त ते करी औक्य। इसका मतलब चित्त का मतलब है चेतना, अपनी चेतना उस वाक्य के ऊपर ही केंद्रित कर दो। प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती के इस वाक्य को अपने हृदय में बिठा दिया कि पाश्चात्य अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है और पुस्तक छापने। तो ये वचन को इतना समय ज्यादा, प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद से मिले तो 3-4 बार मुश्किल से, बहुत से सन्यासी उनके साथ कई सालों तक रहे थे, लेकिन उनके वचनों को अच्छी तरह से चेतना चित्त में करके आज्ञा चित्त में अंकित कर दो, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखे। तो ये सेवा का अर्थ है। और सेवा कौन सी ज्यादा होती है? विपरलंबा सेवा सबसे उत्तम सेवा है, सामने नहीं है फिर भी सेवा हो। फिर उपदेशंति, उपदेशंति का वैसे सामान्य अर्थ यह है कि आपको उपदेश करेंगे, आपको भगवान दिखाने का रास्ता बताएंगे। ते ज्ञानम, आपको दिव्य ज्ञान का उपदेश देंगे, आपका अज्ञान नाश हो जाएगा। और फिर कहां से लाए ज्ञान? ज्ञानिनाम तत्व दर्शन, उन्होंने अपने गुरुजनों के चरणों के बैठकर तत्व का दर्शन किया है। तब तत्व क्या है? तत्व क्या है? जो कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। तत्व जो कृष्ण के तत्व जानता है वो तत्व है। और वो तत्व कहां है? इसी 4th अध्याय में वो तत्व, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। और भक्त्या माम अभिजानाति यावान जस्ट तत्वतः। तो ये सारे तत्व कठे करेंगे तब समझ में आया ज्ञानी नाम तत्व दर्शन, वो तत्वदर्शी है। गुरु के निकट जाकर सत्य को जानने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत होकर प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। वे सत्य को जानने वाले आत्मज्ञानी महापुरुष तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। मनुष्य को गुरु की शरण में पूर्ण रूपेण जाना चाहिए और सेवा द्वारा सेवया अधिक आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यहां पूरा होता है तात्पर्य, सेवा द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो आज का श्लोक क्या था? पहले इंद्र ने अपने गुरु के चरणों में सर रख के उसको प्रसन्न करने का निश्चय कर लिया कि अब निष्कपट होके उस बड़े बुद्धिमान ज्ञान में गंभीर गुरु के शरण में जाऊंगा। प्रभुपाद जी ने इस भाव को हमको कहा कि हमको भी ऐसे गंभीर भाव से निष्कपट होकर गुरु के चरणों में जाना चाहिए। उसकी प्रसन्न करने से ही हमारी भगवत प्राप्ति और भगवत प्रसन्नता संभव है। हरे कृष्ण।